वाणी चल रही थी 9-8-65 की, दूसरे पेज के मध्य आदि बात चल रही थी, तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो क्या? कोई भी अपवित्र रहे और स्वर्ग में चला जाए ये नहीं हो सकता, पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा लेंगे। कहाँ लेंगे? स्वर्ग में लेंगे या यहीं लेंगे? हाँ यहीं लेंगे। ऐसी अनुभूति होने लगेगी जो जो आत्मा पवित्र बनती जाएंगी, भले दुनिया में विनाश बरपा होता रहे, विनाश की विभीषिका फैलती रहे, लेकिन बाबा के बच्चे सुखरूपी स्वर्ग में हिलोरे खाते रहेंगे। स्व माने आत्मा, स्वर्ग का वर्षा माना स्वर्ग माने, स्व माने आत्मा, ग माने गया, जो आत्म की स्थिति में गया तो स्वर्ग में गए। पवित्रता है इससे साबित होता है कि आत्मिक स्थिति है, पवित्रता नहीं है विकृति आती है, विकार आते हैं, इसका मतलब है देवान है, स्व स्थिति नहीं है। और जब स्व स्थिति नहीं है तो नरक होगा या स्वर्ग होगा है? नरक होगा। अब ये कहीं जाने आने की बात बाद में, पहले तो यहाँ इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक की महसूसता आनी चाहिए, आ भी रही हो। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, योगी जीवन जीते हैं, तो अवस्था बदल जाती है, और जब आप पवित्र जीवन जीते हैं मनसा से वाचा से कर्मणा से, किसी भी प्रकार से अपवित्रता आती है तो दुख का अनुभव। अभी तो बाबा कहते हैं अभी भी कर्म करो, श्रीमत की वर खिलाफ ही करो और अभी उसकी सजा भुगतनी पड़े। तो सामान्य आत्मा, आत्मा को राजा ही मिलती है, काई की राजा ही मिलती है, यहाँ काई की राजा ही मिलती है और वहाँ काई की राजा ही मिलेगी है? वहाँ तो स्वर्ग की राजा ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ आत्मा को अपने कर्म इंद्रियों की राजा ही मिलनी चाहिए, उनको स्वराज्य कहा जाता है। किसका राज्य? स्व माने आत्मा का राज्य, पराया राज्य नहीं, प्रकृति का राज्य नहीं, पांच विकारों का राज्य नहीं, रावण का राज्य नहीं, काहे का राज्य? स्व का राज्य। मनुष्य है देह अभिमानी, क्या कौन है देह अभिमानी? जिनको मन है, मन सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है, मन में चंचलता बनी रहती है, वो सब मनुष्य है देह अभिमानी। और देवताएं हैं आत्माभिमानी, उनका मन चंचल नहीं होता, मनन चिंतन मंथन की भी करने की उनको दरकार नहीं है। देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य है यहाँ इस दुनिया में, वहां देवताएं ये कहेंगे नहीं हमारा राज्य है, यहाँ तुम अपन को आत्मा समझते हो, आत्मा कहती है हम इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, मुझे सत्युग में पवित्र शरीर मिलेगा, अभी पतित है, जैसी आत्मा वैसा शरीर, पवित्र आत्मा तो पवित्र शरीर मिलेगा, अपवित्र आत्मा तो अपवित्र शरीर, आत्मा में अभी खाद पड़ी हुई है। काय की खाद पड़ी हुई है? विकृति की। त्रेता में खाद पड़ती है कि नहीं है? काय की खाद पड़ती है? त्रेता में भी चांदी की खाद पड़ जाती है। जो शुद्ध है, ज्ञानेन्द्रियों का प्यार होता है, मुख का प्यार होता है, वो नीचे उतर के बाहु तक आ जाता है। बाहु पास में बंधने लग पड़ते हैं, तो कुछ तो नीचे गिरे ना, वहां चांदी की खाद पड़ गई। चांदी जैसी आत्माएं उतरने लगी, उनके संके रंग में आ गए। द्वापर में तांबे जैसी क्रोधी आत्माएं, कामी आत्माएं, विविचारी आत्माओं के संग में आने लगी, तो तांबे जैसी शकल होने लगी। और कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। अति तमो प्रधान आत्माएं ऊपर से उतरती है, परमधाम से तो नहीं उतरती है, लेकिन कलयुग में जो आत्माओं में उतरती है वो अति तमो प्रधान हो जाती है, और उनके संग के रंग में आकर के दूसरी आत्माएं भी जो अच्छी थी वो भी खराब हो जाती है। पहले तुम आत्मा पवित्र सच्चा सोना थे, तब है सतयुग में, सतयुग आदि में सच्चा सोना थे, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। सोने को हल्का करने के लिए, हल्की कीमत करने के लिए ये खाद डाली जाती है। कलयुग आया फिर लोहा पड़ा, उस समय आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा। क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो दूसरों के ऊपर डोलायमान होने लगती है, तो आत्मा कैसी हो गई? झूठी हो गई। आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा होने लगता है, व्यभिचारी होने लगता है। व्यभिचारी माने झूठा, तो झूठन खाना शुरू कर दी। कब से है? द्वापर युग से। कोई किसी की झूठन खाता है क्या? है नहीं खाता। बाबा तो कह रहे हैं द्वापर युग से झूठन खाना शुरू कर दी है, शरीर भी झूठे हो जाते हैं। झूठे हो जाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर में भी विचार आने लगता है द्वापर युग से। इस्लाम धर्म की आत्माएं तो पूरी डूब जाती है। जो सनातन धर्म के पक्के देवताएं हैं वो उतना विचार में आ सकते, लेकिन थोड़ा छींटा तो उनको भी लगता है। उसको कहा जाता है झूठ खंड, और सतयुग है सत्य खंड। क्या कलयुग को क्या कहते हैं? झूठ खंड। इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। क्या लेना भी झूठ करते हैं, देना भी झूठा करते हैं। किसी को सच्ची चीज देते नहीं। बाप अपनी बेटी को गंदा करके फिर उसकी शादी करता है, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है, झूठ ही झूठ। अभी बाप के साथ योग रखने से तुम्हारी सारी अलाय निकल जाती है। अलाय मन खाद निकल जाती है, इसको योग अग्नि कहा जाता है। इसको है बाप की याद को योग अग्नि कहा जाता है। पुराने जेवर से किचरा निकालने के लिए क्या करते हैं? आग में डालते हैं। तो बाप की याद भी अग्नि है। कैसी याद? थोड़ा बाप को याद किया, थोड़ा घर वालों को याद किया, देह के संबंधियों को याद किया, वो याद नहीं। जो शुद्ध बाप की याद होती है, अभी विचारी बाप की याद होती है, वो तेज अग्नि होती है। उस तेज अग्नि से किचड़ा जल्दी निकलता है। जैसे सोना है तो धीमी अग्नि होगी तो सोना गलेगा नहीं, और तीव्र अग्नि होती है तो सोना गल जाता है। तो ये भी योग अग्नि है जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। कब चले जाएंगे है? जब सच्चा सोना बनेंगे। आत्मा जो झूठी बन गई है वो झूठी न रहे। मन बुद्धि रूपी आत्मा इधर उधर औरों के ऊपर डुलायमान होने वाली न हो तो हम बाप के साथ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जैसे बाप ऊंची स्टेज में रहने वाला है, हम बच्चे भी बाप के साथ ऊंची स्टेज, परमधामी स्टेज में, आत्म की स्टेज में, निराकारी स्टेज में चले जाएंगे। निराकारी स्टेज में जाएंगे तो निरहंकारी निर्विकारी जरूर होंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चलो पढ़ो, अभी से ही चल पड़े। आप मेरे साथ है। बाप कहते हैं मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब कृष्ण का सांवरा रूप क्यों कहते हैं? है? कृष्ण तो सतयुग में है, सांवरा पैदा होगा क्या? फिर सांवरा रूप क्यों कहते हैं? ये तो संगम युग की यादगार है। कृष्ण सांवरा होता है जब तक उसमें अलाय है, उसकी आत्मा में, तब तक सांवरा है। फिर जब अलाय निकल जाती है तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो नाम रूप बदल जाता है। जो बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी तुम बिल्कुल आयरन एज बन पड़े हो, हैं? अभी 60-65-68 साल में कुछ तो सुधार हुआ होगा, हैं? अरे कुछ तो खाद निकली होगी, निकला है खाद निकली है, अभी बिल्कुल आयरन एज बन पड़े हो। कृष्ण की आत्मा पहले बच्चा, फिर बाप। बाप किसको आगे रखता है? बच्चे को आगे रखता है। बच्चे को पहले नहलाए धुलाए के ठीक करके साफ सुथरे स्थान में रख दे। अभी तुम बिल्कुल आयरन एज बन पड़े हो। अब मैं सुनार हूँ क्या? सुनार हूँ। सुनार क्या करता है? तेज अग्नि में डालता है सोने को और उसको शुद्ध कर देता है, फिर उसमें नग लगाता है, हैं? तो बाप भी कहते हैं मैं सुनार हूँ, सबको भट्टी में डाल देता हूँ। क्या जो भी आत्माएं रूपी बच्चे हैं या सजनिया हैं, उन सबको योगाग्नि की भट्टी में डाल देता हूँ। कैसे डाल देता हूँ? पकड़ के डाल देता हूँ क्या? हैं? ऐसी स्थिति परिस्थिति ड्रामा प्लान अनुसार क्रिएट होगी कि सब याद में खड़े हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगेगी क्या? तो सहज सहज परिस्थितियां हैं, सहज सहज सबकी जिंदगी चल रही है, जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला अभी सुख के दिनों में धीरज धरो। क्या खाना पीना कपड़े मकान सब कुछ मिल रहा है अभी कोई प्रकार का बच्चों को कोई दुख दुख नहीं है, लेकिन जब विनाश होगा, इस भंबोर को आग लगेगी तो सब दर बदर होने लगेगी, सब के शरीर खत्म हो जाएंगे, उनके शरीर खत्म हो जाएंगे, फिर नई जनरेशन कहाँ से आएगी? या तो शरीर खत्म हो जाएंगे या तो देह बांध खत्म हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो कभी खलास होती नहीं। या जो आत्मिक की स्थिति में टिकने वाले होंगे, कितने होंगे आत्मिक की स्थिति में टिकने वाले? कितने होंगे? 4.5 लाख। वो तो खत्म होंगे नहीं, वो तो अविनाशी बाप के, अविनाशी अमरनाथ के बच्चे अमरनाथ अमर हैं। एक तो योगाग्नि से पवित्र बन जाएगी। क्या? जो बाप के बच्चे होंगे वो योगाग्नि से ही पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि बाप सुना रहा है। वो अपनी आत्मा को, चलो कैसी भी अपवित्र बन गई, बाप को सौंप दिया। क्या किया? बाप को सौंप दिया। थोड़ा बाप को सौंपा, थोड़ा दूसरों को सौंपा, तो फिर सोना देर में गलेगा ना? क्या जल्दी पवित्र नहीं बनेगा? तो एक तो योगाग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाए खा करके हिसाब किताब चुकुतू करके जावेंगे। सब माने कौन? जिन्होंने बाप सुनार को ये मन रूपी आत्मा नहीं सौंपी है, या तन मन धन पूरा अर्पण नहीं किया है। क्या हिसाब है? जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, वहां हमारा धन होगा। फिर अरस भी है तो परस भी है। क्या किसी आदमी की सारी संपत्ति कोई धंधे धोरी में लगा दी जाए तो उसका मन कहाँ जाएगा? उसी धंधे धोरी में चला जाएगा। तो जहां जिसका तन होगा, जहां जिसका धन होगा, वहां उसका मन भी जरूर जाएगा। तो बोला सब सदाएं खा करके चुकतू हो करके हिसाब किताब वापस चले जाएंगे। सब माने कौन? जो 4.5 लाख के अलावा होंगे उनका हिसाब किताब फिर विनाश में चुकतू होगा। ये ईश्वर की भट्टी है, सबको पावन बनाने के लिए है। क्या? या तो योगाग्नि की भट्टी है या तो विनाश की भट्टी है। इनमें सबको पावन बनना है। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। हैं? क्या कहा? किनसे निकली हो और कब निकली हो? 5000 साल पहले। हैं? 5000 साल पहले भी ज्ञान गंगाएं निकली थी बाप से, और यज्ञ के आदि में भी ज्ञान गंगाएं निकली थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। सैंपल के रूप में कराची में एक छोटा सा नमूना स्वर्ग का बना। क्या नमूना बना था? कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, और जो लड़ाई हुई उसमें ऐसी खून की नदियां बही कि नरक का नजारा लोगों को सामने आने लगा। और जो पुंगरे थे हाबा में, जब आग लगती तो एक कहानी बना दी है कि बिल्ली के पुंगरे बच गए। तो वास्तव में कराची में जो भट्टी चल रही थी उसमें जो बच्चे थे वो सेफ रहे, ان کو کوئی آنچ نہیں آئی. بھلے خون خنجر ہوتا رہا, پوری ٹرین کی ٹرین بھری ہوئی منشیوں کی کاٹ ڈالی گئی, لیکن بابا کے بچے سرکشت رہے. تو یہ ایک نمونہ آیا نا سامنے. اس سمے تو صرف 300-400 کی بات, ابھی کتنے ہوں گے, ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہوں گے. تو تم گیان گنگائیں نکلی ہو ان سے, ان سے نہیں, کن سے, برہما سے نہیں نکلی ہو. یگ کے آدھ میں بھی تم گیان گنگائیں ان سے نکلی, اور جب سمپورن آہوتی ہوگی تو بھی تم گیان گنگائیں ان سے نکلتی. ان سے مانے کن سے ہے, باپ گیان ساگر سے. مانا گنگائیں بعد میں نکلتی ہیں, جمنا اور سرسوتی پہلے نکلتی ہے. منشیوں نے اسے پانی کی گنگا کو سمجھ لیا ہے. کیا منشیوں نے سمجھا کہ شنکر کی جٹاؤں سے کوئی پانی کی گنگا نکلی ہوگی؟ واستو میں یہ تو من بدھی ہے. جٹائیں کہاں دکھائی جاتی ہیں؟ سر میں سے دکھائی جاتی ہے نا. تو جو سر ہے اس میں گیان بھرا ہوا رہتا ہے. وہ گیان کی گنگا تیار ہو کر کے چیتنیہ روپ میں سنسار کا ادھار کرنے کے لیے سب کے سامنے پرتکش ہوتی ہے. کب پرتکش ہوتی ہے؟ جب دنیا کا وناش شروع ہونے لگتا ہے. تو منشیوں نے پانی کی گنگا کو سمجھ لیا ہے. واستو میں پانی کی گنگا کی بات نہیں ہے, تم گیان گنگاؤں کی بات ہے. وہاں دیوتاؤں کی مورتی بھی رکھی ہے. کہاں؟ جہاں گیان گنگا دکھائی جاتی ہے, جو پراچین شیو کے مندر ہیں وہاں گنگا بھی دکھاتے ہیں, اور پھر دوسری مورتیاں بھی دیوتاؤں کی دکھائی جاتی ہیں. واستو میں تم ہو بھگوان کے بچے گیان گنگا, جو پھر بعد میں دیوتا بنتے ہو. جب سورگ میں آئیں گے تب دیوتا کہیں گے. وہاں آتما اور شریر دونوں پوتر ہوں گے. ابھی تو پتت ہے. کیا آتما بھی پتت ہے اور شریر بھی پتت ہے؟ بھارت گولڈن ایج تھا, پھر سلور کاپر ایج بنا, ابھی باپ پھر گولڈن ایج میں لے جاتے ہیں. تمہاری آتما اور شریر دونوں پوتر ہو جاتے ہیں. کیا کہا؟ باپ جب گولڈن ایج میں لے جاتے ہیں تو کیا پریورتن ہوتا ہے؟ آتما بھی پاون ہو جاتی ہے اور شریر بھی پوتر ہو جاتا ہے. تو کیا مرنے کے بعد ہو جاتا ہے؟ نہیں, باپ تو کہتے ہیں میں ایسا دھوبی ہوں جو تمہاری آتما اور شریر روپی وستر دونوں کو صاف کر دیتا ہوں. ایسے دھوبی کے پاس کون جائے گا جو کپڑا ہی پھاڑ کے رکھ دے ہیں اور کہے کہ اگلے جنم میں لے لینا؟ تو دنیا کیا سمجھتی ہے کہ جب سورگ میں جاتے ہیں تو شریر یہاں چھوڑنا پڑتا ہے؟ باپ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, اگر یہاں پورا پرشارت کریں گے ہے, اس تن کو ایشوریہ سیوا میں سواہا کریں گے, تو میں تمہارے تن کو اور من کو دونوں کو پوتر بنا دوں گا. سونا 14 کیرٹ ہوگا تو جیور بھی ایسا ہی بنے گا. سونا 24 کیرٹ کا ہوگا تو جیور بھی ایسا ہی بنے گا. खाद डालने से 20 कैरेट 14 कैरेट 9 कैरेट हो जाती है। तो आत्मा में भी दिन प्रतिदिन खाद पड़ती जाती है। अभी शूटिंग पीरियड में भी क्या हो रहा है? शूटिंग पीरियड में शूटिंग वैसी ही तो होगी जैसा ब्रॉड ड्रामा होता है। सत्युग में कम खाद पड़ती है, त्रेता में थोड़ी हल्की पड़ जाती है, और द्वापर में थोड़ी और ज्यादा खाद पड़ती है। कलयुग में तो पूरा ही तामसी बन जाते। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है क्या? हम समझते हैं हम तो बड़े भारी योगी हो गए, बड़े सर्विसेबल हो गए, हमारी आत्मा अब बहुत पावरफुल बन गई, हम तो बहुत पुराने हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे ज्ञान में चलते हैं तो ज्ञानियों को सबसे ज्यादा अहंकार आता है। ज्ञान का जो अहंकार है वो उनको एकदम नीचे ले जाता है। योगियों को भी अहंकार आता है कि हम बड़े धुरंधर योगी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी तो क्या समझते हैं कि हम निराकार की याद में बहुत परफेक्ट है। लेकिन एक तरफ निराकार की याद करते हैं और दूसरी तरफ पाप कर्म भी विशेष होते रहते, तो सगुना बोझ चढ़ता रहता आत्मा पर। तो सगुना जब बोझ पड़ेगा तो उतरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? सर्विस करेंगे एक गुनी और पाप चढ़ेगा सगुना, तो जरूर उतरती कला होगी। क्योंकि पक्का ज्ञानी तो कोई बेसिक में बनता ही नहीं, एडवांस में भी कोई पक्के ज्ञानी बनते नहीं, कुछ न कुछ त्रुटियां होती रहती, माया हिलाती रहती। जो जितने बड़े महारथी बनते हैं उनको माया उतना ही और जोर से फटकाती है। तो आत्मा पतित बन जाती है, उनको पवित्र बनना पड़े ना। तो बाप कहते हैं मैं सुनार हूं, मैं धोबी भी हूं। 9-8-65 की वाणी का तीसरा पेज, सुनार भी हूं और धोबी भी हूं, योग बल से तुम्हारी आत्मा को धो। प्यार, अगर हम योग लगाते हैं, याद में बैठते हैं और अंदर से बाबा के प्रति प्यार नहीं आता है, नहीं उमड़ता है, तो झूठे योगी हैं। योग में सच्चाई नहीं है, या तो दिल कहीं दूसरी जगह खींचता है। बैठते हैं याद में शिव बाबा की और रावण और माया याद आ जाती है, तो सच्चा योग हुआ क्या? लगन सच्ची हुई क्या? लगन तो सच्ची नहीं कही जाएगी। तो सिर्फ बाप को याद करना है, है? मन मित्र याद नहीं करना है। योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। क्या? कोई कर्मणा सेवा न करो, कोई वाचा सेवा न करो, है? भाषण कोई देने की जरूरत नहीं है। क्या करो, हैं? सिर्फ याद में रहो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन नहीं सकते क्या? ये भागदौड़ की जो सेवा करते हैं, ये बाहुबल की सेवा है या योगबल की सेवा है? ये सेवा भी बाहुबल की है। अगर उसमें प्यार नहीं है, ईश्वरीय सेवा करते हैं और खींच खींच के कर रहे हैं, जैसे हमको ये ड्यूटी दी गई है तो ये ड्यूटी हम करना ही करना है, या दीदी दादी दादाओं ने ये ड्यूटी दी है उनको खुश करना है इसलिए करना है, माने परमात्मा के प्रति तो प्यार नहीं हुआ। तो तो कोई भी बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन नहीं सकते। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है, अगर ये क्रिश्चियन भाई आपस में मिल जाए तो वो विश्व के मालिक बन सकते हैं। कौन? जो क्रिश्चियंस हैं, जिन्होंने एटमिक एनर्जी तैयार की है, मूसल बनाए हैं, अगर वो आपस में मिल जाए तो क्या अंजाम होगा? वो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। लेकिन ये नियम नहीं। क्या क्या नियम नहीं है? कि जो इम्प्योरिटी वाले हैं उनकी यूनिटी बन जाए। जो भी इम्प्योरिटी वाले होंगे उनकी निशानी क्या होगी? जितने ज्यादा आत्मा इम्प्योर होगी उतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा में ज्यादा इंटरेस्ट ले। तामसी आत्मा की ये निशानी है, खुद भी सुख से नहीं रहेगी और दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देगी। तो इससे अंदर में समझ जाना चाहिए, क्या ये तमो प्रधान आत्मा है? इससे कैसे पेश आना चाहिए? युक्ति से पेश आना चाहिए। ऐसा ना हो हम अपना भी नुकसान करें और उसका भी नुकसान हो जाए। तो ये एक हिसाब बताया। जो भी बाहुबल दिखाने वाले हैं, बाहुबल में वाचा का बल भी आ जाता है। कोई बोलने में बड़े फुर्त होते हैं, बड़ी बड़ी तीखी तीखी बातें करते हैं, तो ये बल कहाँ से आता है? हैं? कहाँ से आता है? शरीर के अंदर से ही आता है ना? तो बोला, बाहुबल वाले कभी आपस में मिलकर के एक हो न सके और विश्व के मालिक बन नहीं सकते। कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े और मक्खन बंदर खा गया। तो वो लड़ते हैं, कौन? बिल्ले, वो आपस में लड़ते हैं और बीच में मक्खन भारत को मिल जाता है। भारत को क्या बनाई दिया? हाँ, बंदर बनाई दिया। सेना काहे की ली थी? बंदर होगा तो बंदरों की सेना लेगा और मनुष्य होगा तो मनुष्यों की सेना लेगा। तो राम ने काहे की सेना ली? बंदरों की सेना ली। तो कहानी बनाई दी। क्या कहानी बनाई? दो बंदर तो बिल्ले आपस में लड़े और बंदर बीच में फायदा उठा ले गया। इसमें नंबर वन है श्री कृष्ण। क्या कहा है? जब राम सीता को दिखाते हैं तो चरणों में बैठा हुआ किसको दिखाते हैं? सेवादारी हनुमान को सेवादारी दिखाते हैं। वो किसका पुत्र बताया जाता है? पवन पुत्र हनुमान बताया जाता है। हैं? तो बोला, जो मक्खन खाने वाला है उनमें नंबर वन है श्री कृष्ण। कौन सा श्री कृष्ण? सतयुग वाला या संगम युग वाला? संगम युग वाला विश्व की बादशाही लेता है। सतयुग का जो कृष्ण होगा वो तो सतयुग की बादशाही लेगा, विश्व की बादशाही नहीं लेगा। इसलिए कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं। क्या पुराने समय में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चित्र बनाए गए थे कृष्ण के, उसमें मुख के सामने हाथ में गोला दिखाते थे, तो वह विश्व की बादशाही के मक्खन का गोला। क्या जो विश्व की बादशाही पाने वाली आत्माएं हैं वो सब कृष्ण के मुख में चली जाती? अच्छे अच्छे मक्खन के गोले जो गोपियां तैयार करती हैं, उन मक्खन के गोलों को कृष्ण की सोल क्या करती है? चुराए लेती है और चुरा के अपनी बुद्धि रूपी पेट में डाल लेती है। जैसे चाहो वैसे पचाओ, कोई अपने कंट्रोल में आ जाता है तो उसको जैसे चलाओ वैसे ही चलेगा ना? तो मक्खन का गोला कृष्ण के मुख में दिखाते हैं। कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला सबसे जास्ती देने वाले कौन होते हैं? माताएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, गोप होते हैं, कौन होते हैं? माताएं कृष्ण के मुख में मक्खन के गोले देती। क्या ये क्या बात हुई? माने माताओं को ईश्वरीय सेवा में ये ममत्व नहीं होता कि ये जिज्ञासु मेरा बन जाए। उनको अंदर से क्या लालसा रहती है कि जो भी आत्मा निकले वो बाबा की बन जाए। तो बाप समझाते हैं, वो लोग आपस में लड़कर के भारत के मालिक बनते हैं। कौन लोग? जो कौरव गवर्नमेंट के लोग हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, किया पैसा करते हैं, जीतते हैं ना? वोटिंग होती है तो उसमें जीत होती है, हार होती है कि नहीं? तो बड़े बड़े किया पैसा निकालते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, पब्लिक को जो गुंडे लोग हैं उनको शराब पिलाते हैं, तो गुंडों के बस में साधारण प्रजा आ जाती है और शराब पिला करके उनके द्वारा वोटिंग करवाते हैं। तो रास्ता कैसा अपनाया? उल्टी लड़ाई लड़ते हैं। जिनका नाम दिया दुर्योधन, कौरवों के नाम क्या दिए? दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्ट शासन। कैसा शासन करने वाले? दुष्ट शासन करने वाले। तो वो लोग आपस में लड़कर के भारत के मालिक बनते हैं। अब फिर अपने मालकाना वसूल कर रहे हैं। तुम अपना मालकाना वसूल कर रहे हो, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय याद की ताकत से। उनों को कुछ मिलना थोड़ा ही है। किनों को? उन कौरव गवर्नमेंट को कुछ भी प्राप्ति नहीं होनी है, विनाश हो जाएंगे और तुम मालिक बन जाएंगे। इससे पहले बाप की श्रीमत पर चलना पड़े, क्या कहा, बन तो जाएंगे, विश्व के मालिक तो बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले करना क्या पड़े? बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। पड़े मन है, हाँ, ये मजबूरी है कि बाप जैसे चलाते हैं वैसे ही चलना पड़ेगा। अगर कुछ तिया पैंचा किया तो खैर नहीं होगी। खैर नहीं होगी कि बाप कुछ पिटाई ताई करते हैं क्या, है मारधार कर देते हैं क्या? अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जावेंगी कि जिसमें हर एक बच्चे को श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। श्रीमत से श्रेष्ठ और आसुरी मत से भ्रष्ट बनते। क्या कहा? जो असुर बातें सिखाते हैं उन असुरों की मत पर अगर चलते हो तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाता है, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो बात बताते हैं उसकी मत पर चलते हो तो तुम श्रेष्ठ देवता बन जाते। ये है आसुरी पतित दुनिया। पतित दुनिया में सब कैसे होते हैं? सब पतित होते हैं। भ्रष्ट दुनिया है भ्रष्टाचारियों की, तो सारे ही भ्रष्ट हैं। तो सारे ही भ्रष्ट जब दुनिया में होंगे तो जो भी दूसरे लोग मत देंगे वो कैसी देंगे, हैं? भ्रष्ट मत देंगे, पतित मत देंगे। पतित मत दे करके दूसरों को पतित ही बना देंगे। एक बाप आया हुआ है जो कभी भी भ्रष्ट मत नहीं देता। क्यों? दुनिया में सब भ्रष्ट मत देते हैं और बाप क्यों नहीं देता? कारण क्या? कुछ कारण तो होगा, है? बाप को अपना रथ नहीं है। जो बाप को अपना रथ है नहीं, क्यों? प्रजापिता का रथ नहीं है, है? प्रजापिता का रथ, वो प्रजापिता का रथ है, वो अपने तरीके से अपने रथ को यूज करता होगा, लेकिन शिव बाप यूज नहीं करता है? करता है और जिम्मेवारी भी लेता है कि ये जो भी काम करेगा, वो भी तो ब्रह्मा है ना प्रजापिता, ये जो भी काम करेगा मैं इसके काम का जिम्मेवार, ये जो कुछ भी बोलेगा मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो सारी दुनिया में है पतिता आसुरी मत, एक भी पावन नहीं है। क्या प्रजापिता भी पावन नहीं है? प्रजापिता के अंदर भी श्रेष्ठ मत देने वाला कौन है? शिव बाबा। न कि प्रजापिता श्रेष्ठ मत देता है, है? अगर वो श्रेष्ठ मत देने वाला होता तो पिछले 63 जन्मों में दुनिया का उद्धार कर दिया होता। नहीं हुआ ना उद्धार, खुद भी नीचे गिरा और सारी दुनिया भी नीचे गिरी। तो पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होता। क्या जो नई दुनिया बनेगी उसमें एक भी पतित नहीं होगा? अच्छा, वो नई दुनिया कितने लोगों की होगी जिसमें एक भी पतित नहीं होगा? हैं? 9 लाख की एकदम तैयार हो जाएगी, हैं? 8 की होगी, देवताओं की, अष्ट देवों की होगी, उसमें माता पिता नहीं होंगे, उनको निकाल के बैठ चलो बाहर जाओ स्वर्ग में जाओ, तो है वो परमधाम में जाओ, हाँ होंगे हैं? है जब दोनों हाथ उठाते हैं क्या कहते हैं? 10 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो बोला पावन दुनिया में तेरे एक भी पतित नहीं होता। अभी सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। क्या कहा? जो पतित हैं उन पतितों को पावन बनाने वाले निमित्त कौन बनते हैं? सीता और राम। हम सीताएं जो रावण की जेल में पड़ी हैं, तो हे राम तुम आकर के छोड़ाओ, पावन दुनिया में हमको ले चलो। कौन ले चले हैं? कौन ले चले? सीता और राम पावन दुनिया में ले चलो। कौन? निराकार राम ले चले या साकार राम? निराकार राम तो खुद भी पावन दुनिया में, एक पावन दुनिया में जाता है। कहाँ? परमधाम में तो जाता है, है? लेकिन सुखधाम में नहीं जाता। तो पावन दुनिया में हमको ले चलो, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो आया तो मुख से कहते रहते, रावण ने बिल्कुल ही अज्ञान निज में सुलाई दिया। अब बाप आकर के जगाते हैं, परमपिता परमात्मा जो सृष्टि रचयिता है उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। क्या सृष्टि का रचयिता कौन है? सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि साकार है। निराकारी सृष्टि कौन सी है? परमधाम में जो आत्मा है उसका झुंड है, वो निराकारी सृष्टि है। निराकार सृष्टि का रचयिता निराकार होता है ज्योति बिंदु, और साकार सृष्टि का रचयिता जिसमें वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है वो साकार सृष्टि का रचयिता है। उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। क्या कहा? इन ब्रह्मा की बायोग्राफी की बात नहीं की, इनकी बायोग्राफी को हमें जानने की दरकार नहीं है। किसकी बायोग्राफी? बायोग्राफी माने जीवन कहानी। उनकी जीवन कहानी को माना जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है उनकी जीवन कहानी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण उनकी बायोग्राफी को भी जानते हैं। किसका किसका नाम ले दिया है? जो राम सीता है वही ब्रह्मा, वही मिलकर के विष्णु, और वो शंकर, कोई अलग अलग हुए क्या? नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, लक्ष्मी नारायण जो लक्ष्मी नारायण सतयुग में, वो सतयुग के आदि में संगम युग में बनेंगे, वो विश्व के मालिक बनेंगे, वो जगत के माता पिता बनेंगे। तो उनकी बायोग्राफी को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को हम जानते हैं। तो 44 फूल बन गए ना। क्या कहा? 44 फूल बन गए किस बात में? अगर एक बाप और माता पिता की जीवन कहानी को जान लिया तो नालिश भूल हो गए। अगर उनकी जीवन कहानी को नहीं जान पाया और सबको जान लिया, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को पहचान लिया तो नालिश भूल नहीं कही जाएगी। तुम कृष्ण के मंदिर में जावेंगे तो समझेंगे ये सतयुग का पहला प्रिंस है। क्या कहा है? तुम जब मंदिर में जावेंगे तो क्या समझेंगे? संगमयुगी कृष्ण है ये समझेंगे है? नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? ये सतयुग का पहला प्रिंस है ये समझेंगे। अच्छा, जो मूर्तियां मंदिरों में यादगार बनाई गई हैं, वो कौन से कृष्ण की बनाई गई है? संगमयुगी कृष्ण की। तो बाबा ने ये क्यों कह दिया? तुम कृष्ण के मंदिर में जावेंगे तो समझेंगे ये सतयुग का पहला प्रिंस है। हाँ, जो प्रिंस भी दो तरह के हुए, एक सतयुग के आदि का एकदम जस्ट आदि, और एक वो जब सतयुग थोड़ा थोड़ा आरंभ हो चुका होता है। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा सरस्वती में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी नीचे काले चित्र हैं। ब्रह्मा सरस्वती की वर्तमान समय की एडवांस पार्टी में जो पार्ट बजाने की यादगार है वो दिलवाड़ा मंदिर में भी है। वर्तमान समय की, भविष्य की नहीं। क्या यादगार है? नीचे काले चित्र बने हुए हैं और ऊपर गोरे चित्र दिखाए हैं। क्या आदिनाथ को काला दिखाया है और ऊपर छत में जो चित्र है देवताओं के, वहां कृष्ण को गोरा दिखाया है। ये सच्चा सच्चा यादगार है। क्या दिलवाड़ा मंदिर नीची स्टेज में तो काले हैं और ऊंची स्टेज में तो गोरे हैं? नीचे तपस्या में बैठे हैं, भले अवस्था नीचे है, नीची स्टेज है, लेकिन फिर भी तपस्या में है, ऊपर में है प्रारब्ध। अभी तो ये नरक है ना। जब कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? कोई मर गया तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। ये कहावत क्यों चली आ रही है? अरे इस दुनिया में स्वर्ग है कहाँ जो पधारा, तो क्यों कहते हैं स्वर्ग पधारा? ये कहाँ की यादगार बोलते हैं? इस संगमयुग की यादगार है। जो दीचे दी मरते हैं ईश्वरीय श्रीमत पर चलने के लिए, उन श्रीमत पर चलने वालों की ये गायन है कि वो स्वर्गीय स्टेज का अनुभव करने लग पड़ते हैं। जैसे नेहरू मरा तो लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो बच्चे उनको चिट्ठी लिखते हैं। अगर वह स्वर्ग गया तो फिर तुम ब्राह्मण क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में गया फिर तो ब्राह्मण खिलाने की बात है ही नहीं। उनको स्वर्ग में तो बहुत वैभव मिलते होंगे, तुम उनको भोग देने के लिए ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हो? तुम नीचे नरक में उनको मंगाए करके खिलाते हो, परंतु इन बातों को वो समझते नहीं। इतना अंधकार है, बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना। क्या इस बात में किसी को भी दुख नहीं देना? ज्ञान में आने के बाद कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए, चाहे बेसिक में आए हैं और चाहे एडवांस में आए हैं। एडवांस में आने के बाद और अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक वाले तो जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे, और जो एडवांस में आ गए वो तो बड़े बच्चे हो गए। तो खबरदार रहना, अगर दुख देते रहेंगे तो अंत में अंजाम क्या होगा? दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, अंत मते तो गति हो जाएगी। अंतिम समय में अगर कोई दुखी होके मरे तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? नरक में जाएगा। बाप तो दुखहरता सुखहरता है ना, तो दुखहरता सुखहरता के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? ऐसे ही होने चाहिए। तुम भी पांच विकारों का दान देते हो, कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दे है? पांच विकारों का दान देंगे तो तुम्हारे विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। ग्रहण लगा है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे पांच विकारों का दान दो। क्या खाने पीने की वस्तुओं को दान देने की बात नहीं है? तो तुम सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे, दुख का ग्रहण छूट, तुम सुखदाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए पांच विकारों का दान लिया जाता है, ये तो अच्छी बात है ना। अभी तुम्हारे ऊपर पांच विकारों का ग्रहण लगने से काली बनो, हम तो तुम्हारे विकार ही मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं? विमाना जो विपरीत है, कार माने कर्म है, जो श्रीमत के वर खिलाफ विपरीत कर्म करते हो, पाप कर्म तुम करते हो, वही तुमसे हम मांगते हैं, और तो कुछ मांगते नहीं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को आत्माभिमानी बन गए। क्या कहा? पांच विकार दान में देने के लिए क्या बनना है? अगर आत्माभिमानी बनेंगे तो पांच विकार दान में देते रहे, और देह अभिमानी बनेंगे तो पांच विकारों को ग्रहण करते रहेंगे, बजाय देने के और ही लेते रहेंगे। मैं सेठ हूँ क्या? ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए क्या कि मैं सेठ हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, मैं फलाना हूँ? ये सब भूल जाना चाहिए। मैं क्या हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। न सेठ हूँ, न राजा हूँ, न कोई बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे मिलना है। किनसे? इन ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, किससे मिलना है? जो आत्माभिमानी सदा रहने वाला बाप है उससे वर्षा मिलना है। इसलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्माभिमानी हैं, जानती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बने हैं, अपन को आत्मा समझेंगे तो बाप याद आवेगा। क्या? जो जैसा होगा उसको वैसा ही अपना संगी साथी याद आ जाएगा। चोर डकैत होगा तो उनको क्या याद आता होगा? चोर डकैतों का ही संग याद आवेगा। तो तुम भी अगर आत्मा बनेंगे तो जो आत्माओं का समूह है वो तुम्हें याद आवेगा। आत्म की स्थिति वाली आत्माएं तुम्हारे संगी साथी बनेंगी, बाप तुम्हारा संगी साथी बनेगा। अगर देह समझेंगे तो लौकिक बाप याद आ जाएगा, लौकिक संबंधी याद आ जाएंगे। क्या कहा? अब ज्ञान में चलने वाले ये देखें अपन को कि देह और देह के संबंधी ज्यादा याद आते हैं या आत्मा ज्यादा याद आती है? क्या ज्यादा याद आता है? समय का बाप ज्यादा याद आता है या देह और देह के संबंधी ज्यादा याद आते हैं? है? क्या ज्यादा याद आता है? आत्मा ज्यादा याद आती है। तब तो लगता 24 घंटे में से 12 घंटे की याद पक्की हो गई, कम से कम, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, पलड़ा भारी हो गया। और बाबा तो कहते हैं अगर 8 घंटे की भी याद हो गई तो आत्मा पावन बन जाएगी। हैं? तो ये तो बात झूठी हो गई। हैं? یہ تو جھوٹی بات ہو گئی, سراسر جھوٹ بول لیا. تو بولا اپن کو آتما سمجھیں گے تو باپ یاد آئے گا. اس لیے دیہ نہیں سمجھنا, کیونکہ دیہ سمجھنے سے ہی دیہ کے سمبندھ یاد آتے ہیں اور پھر پاپ بنتے رہتے ہیں. جن کی یاد آئے گی ان کی مت آٹومیٹک بدھی میں گھس جائے گی. اگر باپ یاد آئے گا تو باپ کی مت, باپ کی سریمت بدھی میں یاد آئے گی. مجھ باپ کو یاد کرنے سے تمہارے پاپ بھسم ہوں گے, باپ رکھا کریں گے. یاد ہی نہیں کریں گے تو پھر رکھا کیسے کروں گا. ابھی پریکٹس پکی کر لو, نہیں تو بناش کے سمے ٹائم پر کیا ہوگا. اگر بدھ یوگ سے دیہ کے سمبندھیوں کو یاد کرنے کی زیادہ پریکٹس پڑی ہوئی ہوگی تو جب کوئی بھیڑ پڑے گی, کوئی دکھ پڑے گا, کوئی کٹھنائی آئے گی تو کون یاد آئیں گے. دیہ اور دیہ کے سمبندھ یاد آ جائیں گے تو بدھی ان کی طرف بھاگے گی, تو تن بھی جہاں ہمارا من ہوگا